पृष्ठ संख्या 125। यही वह कहानी है जिसको पंडित दयाशंकर नसीम ने 1838 ईस्वी में अपनी प्रसिद्ध मथनवी गुलजारे नसीम के रूप में प्रस्तुत किया। इस पद्य रचना के आगे लोग मजहबे इश्क को भूल गए। लाहौर के एक कवि बेनी नारायण जहाँ भी फोर्ट विलियम कॉलेज में उस समय पहुँचे जब गिलक्रिस्ट वहाँ से जा चुके थे, परंतु उन्होंने कॉलेज के लिए दो ग्रंथ तैयार किए। एक तो प्रेम कथा थी जिसका नाम चार गुलशन था और दूसरा ग्रंथ कवियों का एक तज़किरा था जो कप्तान रोबक के अनुरोध पर लिखा गया और 1814 ईस्वी में समाप्त हुआ। इसमें 125 कवियों का संक्षिप्त हाल है और जहाँ ने अपनी कविताओं का बड़ा भाग भी इसमें एकत्र कर दिया है। कदाचित इसीलिए इसका नाम दीवाने जहाँ रखा है। गुजरात के एक ब्राह्मण परिवार के लल्लू लाल जी, जिन्हें आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता कहा जाता है, फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी पुस्तकें लिखने के लिए नियुक्त किए गए थे। उन्होंने प्रेम सागर, राजनीति और कुछ दूसरी पुस्तकें हिंदी में लिखीं। यही वह हिंदी थी जो खड़ी बोली पर आधारित थी। इन ग्रंथों का बड़ा महत्व है क्योंकि उनके अध्ययन से हिंदी गद्य में उस नई परंपरा का संचार हुआ जो थोड़े से अंतर के साथ उर्दू से संबद्ध था। हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने इसका उल्लेख विस्तार से किया है, जहाँ उसकी ओर संकेत मात्र करना ही पर्याप्त होगा। लल्लू लाल जी उर्दू भी जानते थे। उन्होंने काजिम अली जवान की सहायता से उर्दू में सिंहासन बत्तीसी लिखी और यह पुस्तक उर्दू तथा हिंदी दोनों लिपियों में प्रकाशित हुई। इन लेखकों के अतिरिक्त अमानतुल्लाह शौदा, हफीजुद्दीन, इकराम अली, खलील अली अश्क और मिर्जा जान तपिश ने भी कई पुस्तकें लिखी और थोड़े ही समय में फोर्ट विलियम कॉलेज के संरक्षण में उर्दू गद्य के भंडार में बड़ी पूंजी एकत्र पृष्ठ संख्या 126 हो गई। अब यदि हम इस कॉलेज में लिखी गई पुस्तकों और उर्दू गद्य के विकास का विवेचन करें तो हमें कई बातों को दृष्टि में रखना पड़ेगा। पहली बात तो यही है कि अंग्रेजों ने यह कॉलेज विदेशियों के लाभ के लिए स्थापित किया था और यहाँ उसी ढंग के ग्रंथ लिखाए गए जो उनके काम के मुताबिक थे। इन ग्रंथों में समकालीन स्थिति या जनता की दुर्दशा और स्वतंत्रता के सपनों के संबंध में कुछ ढूंढना व्यर्थ होगा। उनका पहला उद्देश्य यही था कि अंग्रेज उर्दू भाषा सीख जाएं। यह दूसरी बात है कि उनमें की कुछ पुस्तकें उच्च कोटि की रचनाएं सिद्ध हुईं और गद्य साहित्य के विकास में उनका महत्व स्थापित हो गया। दूसरी बातें जिनको ध्यान में रखना आवश्यक है यह है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के अधिकारियों ने अनुवाद पर जोर दिया और गंभीर विषयों पर पुस्तकें नहीं लिखाईं। इनका संबंध कुछ तो उस उद्देश्य से स्पष्ट है जिसको सम्मुख रखकर किताबें लिखाई गई थीं और कुछ उस समय की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति की व्याख्या करती हैं। यह भी याद रखना चाहिए कि यह पुस्तकें अधिकतर कॉलेज के अंदर सीमित रहीं और बाहर के लोग उनके संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त न कर सके। इसलिए यह कहा जा सकता है कि इस गद्य रचना ने साधारणतः उर्दू गद्य के विकास पर कोई गहरा प्रभाव नहीं डाला। यह अवश्य हुआ कि कुछ साधारण लेखक जो दिल्ली और लखनऊ के वातावरण में केवल रीत गति तथा चलने वाले कवि होकर रह जाते, नए वातावरण में एक नवीन गद्य शैली के जन्मदाता बन गए। इस प्रकार फोर्ट विलियम कॉलेज का एक विशेष महत्व है जिससे विमुख नहीं हुआ जा सकता। फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर भी उर्दू गद्य में काम हो रहा था। धीरे धीरे उनके बारे में हमारी जानकारी बढ़ रही है और ऐसा ज्ञात होता है कि उनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं। इस संक्षिप्त इतिहास में उनका उल्लेख संक्षिप्त ही में किया जा सकता है। मीर तकी मीर के एक नातेदार मोहम्मद हुसैन कलीम, जो अपने युग के प्रसिद्ध कवि थे, उन्होंने तसव्वुफ के बहुत ही महत्वपूर्ण तथा गंभीर ग्रंथ फुसूसुल हिकम का उर्दू में अनुवाद किया। बिंद्रावन हकीम मोहम्मद शरीफ, मौलवी करीमुद्दीन इत्यादि ने भी गद्य में पुस्तकें लिखी। सच तो यह है कि ना जाने कितनी पुस्तकें लिखी गई होंगी, परंतु हम तक बहुत कम पहुंची हैं क्योंकि उस समय तक भारतवर्ष में प्रेस ना होने के बराबर थे और हस्तलिखित पुस्तकें लुप्त हो जाती थीं। फिर भी जो ग्रंथ उपलब्ध हैं उनके नाम लिए जा सकते हैं। लखनऊ में काव्य के साथ साथ गद्य का विकास भी हो रहा था। मुहम्मद बख्श महजूर ने कई कथाएं लिखीं जिनमें गुलशने नवबहार और नवरत्न ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं। इसी प्रकार हकीकत की कृतियाँ यज्वे इश्क और तिश्ना की रचना हप्तशय्या भी अपने जमाने में मशहूर थीं, परंतु 19वीं शताब्दी के आरंभ में लिखित पुस्तकों में इंशा अल्लाह खां इंसा की रचना रानी केतकी और कुंवर उदयभान की कहानी एक विशेष महत्व पृष्ठ संख्या 127 रखने वाली पुस्तक है जिसे हिंदी और उर्दू दोनों के आलोचक अपनाते हैं। इंशा की चर्चा लखनऊ केंद्र की काव्य रचना के सिलसिले में आ चुकी है जहाँ केवल यह बताना है कि उन्होंने यह कहानी ऐसी हिंदुस्तानी भाषा में लिखी जिसमें फारसी अरबी के शब्दों का बहिष्कार किया है। फिर भी सारी कथा बड़े महत्वपूर्ण गद्य में लिखी गई है। यह पुस्तक देवनागरी लिपि में भी प्रकाशित हो चुकी है और अगर किसी और कारण से नहीं तो भाषा की दृष्टि से पढ़ने की चीज़ है। इंशा की बुद्धि की तीव्रता, उनकी कल्पना शक्ति और विचार की नवीनता इस पुस्तक में पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है। इंशा की दूसरी महत्वपूर्ण रचना दरिया ए लताफत है जो फारसी में है, परंतु इसमें उर्दू गद्य के बहुत से उदाहरण मिलते हैं। इस पुस्तक का एक विशेष महत्व भी है और भारतीय लेखक द्वारा लिखित इसको उर्दू का पहला व्याकरण समझा जाता है। मगर यह याद रखना चाहिए कि यह केवल एक व्याकरण नहीं है बल्कि भाषा विज्ञान का एक बड़ा कोष भी है और इससे अब तक लाभ उठाया जा रहा है। इसमें उस समय की भाषा के रोचक उदाहरण दिए गए हैं और विभिन्न स्थानों की बोलियों के अंतर को विवेकपूर्ण स्पष्ट किया गया है। कुछ समय पूर्व इंशा की एक और पुस्तक सिल्के गुहर प्राप्त हुई है। इसमें भी एक कहानी कही गई है, परंतु इसकी विशेषता केवल यह है कि इसमें उन अक्षरों का प्रयोग नहीं किया गया है जिन पर बिंदु होते हैं। यह एक प्रकार का काव्य अलंकार था जिसका प्रयोग इंशा ने गद्य में भी किया। भारतवर्ष में वहावी आंदोलन के एक नेता मौलवी इस्माइल थे। यह आंदोलन सिखों और अंग्रेजों के विरुद्ध 19वीं शती के आरंभ में काफ़ी महत्व ग्रहण कर गया था। वह लोग इस्लाम धर्म में एक विशेष प्रकार का सुधार चाहते थे और अपने विचारों के प्रचार में बड़े उत्साह और उल्लास का प्रदर्शन करते थे। इस संबंध में फारसी और उर्दू में उनकी रचनाएं भी मिलती हैं। मौलवी इस्माइल ने उर्दू में एक पुस्तक तकवियतुल ईमान लिखी जो धार्मिक कारणों से बहुत प्रसिद्ध हुई, किंतु उसकी भाषा में किसी प्रकार का साहित्यिक तत्व तो नहीं है। इस युग की सबसे महत्वपूर्ण गद्य रचना मिर्जा रजब अली बेग सुरूर की पुस्तक फसाना ए अजायब है। सुरूर लखनऊ के सबसे पहले गद्य लेखक समझे जाते हैं। वह 1787 ईस्वी में पैदा हुए और लखनऊ ही में प्रचलित शिक्षा में निपुणता प्राप्त की। वह कविताएं भी लिखते थे और आदर की दृष्टि से देखे जाते थे। अवध के बादशाह गाजीउद्दीन हैदर ने किसी बात पर रुष्ट होकर उन्हें लखनऊ से निकाल दिया और सुरूर कानपुर चले गए। वहीं अपने मित्र हकीम असद अली के अनुरोध पर फसाना ए अजायब लिखा। जब वाजिद अली शाह गद्दी पर बैठे तो उन्होंने सुरूर को क्षमा दे दी और लखनऊ बुलाकर उनको दरबार का कवि नियुक्त कर दिया। गदर होने पर सुरूर को लखनऊ छोड़ना पड़ा। 1859 ईस्वी के बाद से वह अपने अन्य गुणों के कारण महाराजा बनारस, महाराजा अलवर और महाराजा पटियाला के यहाँ सम्मान के साथ पृष्ठ संख्या 128 रहे। 1963 ईस्वी में आँखों की चिकित्सा के लिए कलकत्ते गए। वहाँ से लौटकर 1867 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया। सुरूर की कई रचनाएं मिलती हैं जिनमें सर्वप्रथम और श्रेष्ठतम फिसाना ए अजायब है। यह कहानी 1824 ईस्वी में लिखी गई और जैसा कि उस समय की कहानियों में होता था, यह कहानी भी अस्वाभाविक बातों से भरी हुई है। इस पर पद्मावत और अल्फ लैला का प्रभाव स्पष्ट देख पड़ता है। कुछ लोगों ने इसको प्राचीन कथाओं और आधुनिक उपन्यास के बीच की कड़ी कहा है, परंतु वास्तव में पुरानी कहानियों की भांति इसमें भी कुछ नैतिक गुणों के प्रचार और विभिन्न प्रकार की असंभव घटनाओं के कल्पनात्मक वर्णन से मनोरंजन पैदा करने की चेष्टा की गई है। इसकी शैली बड़ी रंगीन और पेचदार है और प्रायः सभी वाक्य तुकांत हैं। इसमें मीर अम्मन की सरल भाषा की हंसी उड़ाई गई है। लेखक की दृष्टि से सीधी सादी गद्य रचना कोई कला नहीं रखती, उसे अलंकार पूर्ण होना चाहिए। सुरूर का कमाल यह है कि वह हर घटना के अनुसार शब्द ढूंढ निकालते हैं और आवश्यक हो तो हिंदी शब्दों का प्रयोग भी कलात्मक रूप में करते हैं। इस पुस्तक से लेखक की सभ्यता के बारे में बड़ी जानकारी प्राप्त होती है। जन्म, मृत्यु, विवाह के संस्कारों, रहन-सहन और प्रचलित ज्ञान के संबंध में बहुत सी बातें बड़ी सुंदरता से इस पुस्तक में बयान की गई हैं। परंतु कहानी के वास्तविक जीवन से दूर होने के कारण आज के पाठक को साधारणतः इसमें रस नहीं मिलता। फिर भी यह रचना उर्दू साहित्य की महान रचनाओं में है और 20 बार प्रकाशित हो चुकी है। फिसाना ए अजायब के अतिरिक्त सुरूर ने और कई रचनाएं तैयार की, जिनमें से कुछ यह हैं: सुरूर सुल्तानी, शरर इश्क, सिगुफा ए मोहब्बत, गुलियारे सुरूर, सविस्ताने सुरूर और इंशाए सुरूर। सुरूर सुल्तानी 1847 ईस्वी में वाजिद अली शाह की आज्ञा से लिखी गई। यह एक फारसी पुस्तक का अनुवाद है और फिसाना ए अजायब की शैली में लिखी गई है। सर्रे इश्क में पंछियों के प्रेम की कहानी बड़े रोचक ढंग से कही गई है। इसकी रचना 1856 ईस्वी में हुई। इसी वर्ष सुगुफा ए मोहब्बत भी लिखी गई। यह भी एक प्रेम कहानी है जिसे मेहर चंद खत्री इससे पहले लिख चुके थे। सुरूर ने इसे अपने ढंग से लिखा है। गुलजारे सुरूर एक धार्मिक पुस्तक का अनुवाद है जिस पर मिर्जा गालिब ने प्रस्तावना भी लिखी थी। सविस्ताने सुरूर में अलफ लैला की कुछ कहानियों का अनुवाद है और इंशा ए सुरूर उनके पत्रों का संग्रह है जो उनकी मृत्यु के पश्चात संपादित हुए। इसी समय अवध में एक और रचनाएं की गईं जो महत्व रखती हैं। फकीर मुहम्मद खां गोया शाही सेना के रिसालदार थे और बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति समझे जाते थे। वह उस समय के अच्छे कवि थे और नासिक को अपनी रचनाएं दिखाते थे। 1850 ईस्वी में उनका देहांत हुआ। गोया ने 1835 ईस्वी में फारसी की प्रसिद्ध पुस्तक अनवारे सुहैली का अनुवाद बोस्तानी हिकमत के नाम से किया। इसमें भी पृष्ठ संख्या 129 हितोपदेश और पंचतंत्र की कहानियां हैं। गोया का अनुवाद बहुत सरल और सादा तो नहीं है, परंतु इसकी भाषा सुरूर की भाषा के समान अलंकारों और उपमात्रों से भरी हुई भी नहीं है। इसके 2 वर्ष बाद नीमचंद खत्री ने एक फारसी कहानी का अनुवाद किस्सा ए गुलो सनोवर के नाम से किया और प्रकाशित हुआ। कुछ दूसरे लेखकों के नाम भी मिलते हैं, परंतु यहाँ उसका उल्लेख नहीं किया जा सकता। उर्दू गद्य के विकास की कहानी अधूरी रह जाएगी यदि दिल्ली कॉलेज और उससे संबंधित देहली वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी का वर्णन न किया जाए, क्योंकि यदि फोर्ट विलियम कॉलेज में गल्प, इतिहास और धार्मिक पुस्तकों के अनुवाद हुए तो इस सोसाइटी ने गणित, विज्ञान, ज्योतिष, तर्क एवं दर्शन को भी अनुवाद योजना में सम्मिलित कर लिया। 1804 ईस्वी के पश्चात दिल्ली एक प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव क्षेत्र में आ चुकी थी और वहाँ भी अंग्रेजों ने वही जाल बिछाना प्रारंभ किया था जो उन्होंने और स्थानों पर बिछाया था। दिल्ली हिंदू मुस्लिम संस्कृति का प्राचीन केंद्र थी जहाँ दोनों मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहते थे, लेकिन सारे देश में जो नवीन स्थिति पैदा हो रही थी उसका प्रभाव यहाँ पड़ना भी स्वाभाविक था। प्राचीन परंपराओं का यह नगर आसानी से सब कुछ स्वीकार नहीं कर सकता था, परंतु जीवन की आवश्यकताओं ने नए प्रकार के शिक्षालय खोलने पर बाध्य किया। 1825 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज स्थापित हुआ जिसमें प्रत्येक विषय की उच्च शिक्षा दी जाती थी और शिक्षा का माध्यम उर्दू भाषा थी। सरकारी रिपोर्टों से पता चलता है कि यह योजना बहुत सफल सिद्ध हुई। 1828 ईस्वी में इस कॉलेज में अंग्रेजी कक्षा भी खोल दी गई। दिल्ली वासियों ने इसका कड़ा विरोध किया और उसे इस आज्ञा में संशोधन करना पड़ा। यह वह समय था कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी और कार्यालयों की भाषा उर्दू घोषित की जा चुकी थी, परंतु इस कॉलेज में सारी शिक्षा उर्दू भाषा के माध्यम से ही दी जा रही थी, जो एजुकेशन कमेटी कॉलेज का प्रबंध चलाती थी। वह कुछ पुस्तकों के अनुवाद उर्दू में करा चुकी थी कि 1841 ईस्वी में देहली वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी की स्थापना हुई, जिसके संरक्षण में 125 से अधिक ग्रंथ तैयार हुए। यह सोसाइटी अधिकतर जनता की सहायता से चलती थी और कभी कभी सरकारी सहायता भी मिल जाती थी। जिन ग्रंथों का यहाँ अनुवाद हुआ या जो पुस्तकें यहाँ लिखाई और छपाई गईं, उनकी सूची नहीं दी जा सकती, परंतु कुछ पुस्तकों और विषयों के नाम दिए जाते हैं, जिससे इस नगर के महत्व का अनुमान लगाया जा सकेगा। रामायण, महाभारत, लीलावती, धर्मशास्त्र, शकुंतला, रघुवंश इत्यादि के अनुवाद तथा सौदामिनी, दर्द, जुर्रत इत्यादि के काव्य संग्रह और भारत, ईरान, यूनान, इंग्लैंड, रोम के इतिहास, गणित इत्यादि। इनके अतिरिक्त विज्ञान के सभी विभागों पर पुस्तकें, भूगोल, गल्प, कवियों के तज़किरे और धार्मिक ग्रंथ, सभी प्रकार की पुस्तकें इस सोसाइटी ने तैयार कराई। अनुवाद अधिकतर अंग्रेजी, फारसी, पृष्ठ संख्या 130, अरबी और संस्कृत भाषाओं से होते थे। दुख इस बात का है कि इनमें से अधिकतर ग्रंथ अब नहीं मिलते। केवल इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में उनका बड़ा भाग मौजूद है। अनुवादकों को धर्म नारायण, अयोध्या प्रसाद, हरिवर्मन लाल, शीतल प्रसाद, कालीराम, वजीर अली, गुलाम अली, मोहम्मद अहसन और रामचंद्र के नाम मिलते हैं। इनमें मास्टर रामचंद्र को सबसे अधिक महत्व प्राप्त है। रामचंद्र दिल्ली कॉलेज के पढ़े हुए थे और शिक्षा समाप्त करने के बाद इसी कॉलेज में यूरोपियन विज्ञान के अध्यापक हो गए। उन्हें गणित से विशेष लगाव था और उन्होंने गणित के कई ग्रंथ का अनुवाद किया था। गणित ही की उनकी एक रचना का इंग्लैंड में स्वागत किया गया। रामचंद्र ने कई साहित्यिक पुस्तकें भी लिखी हैं, जिनमें अजायबे रोजगार और तज़किरतुल कामिलीन बहुत प्रसिद्ध है। वह ईसाई हो गए थे और इस कारण कुछ दिनों के लिए दिल्ली के हिंदू मुसलमानों में उनका सम्मान बहुत कम हो गया था, परंतु यह स्थिति उनकी योग्यता और ज्ञान के सामने कायम न रह सकी। मिस्टर रामचंद्र को बदली हुई स्थिति का पूरा आभास था, इसलिए उन्होंने फवायदुन्नाजरी और मुहिब्बे हिंद की पत्रिकाएं भी प्रकाशित की और वैज्ञानिक विचारों को फैलाने का यत्न किया। यह कहना असंगत ना होगा कि रामचंद्र एक प्रगतिशील विचारक थे, जिनके लेखों ने नए विचारों के लिए रास्ता साफ किया। इसी समय के कुछ और लेखक हैं, उनका उल्लेख सुविधा के लिए आगे के अध्याय में किया जाएगा। यह उर्दू गद्य की प्रगति की एक संक्षिप्त रूपरेखा है। इसके अध्ययन से ज्ञात होगा कि यद्यपि इसका आरंभ 15वीं शताब्दी में हो चुका था, परंतु इसका सर्वव्यापक और बहुमुखी विकास 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उत्पन्न हो गया। जो आलोचक दिल्ली कॉलेज के पाठ्यक्रम को ध्यानपूर्वक देखेगा, उसे यह देखकर आश्चर्य होगा कि विज्ञान और दूसरे विषय उर्दू में किस प्रकार पढ़ाए जाते रहे होंगे। और जो उनकी सफलता का हाल रिपोर्टों में पढ़ेगा, उसे ज्ञात होगा कि उर्दू भाषा में इतनी शक्ति उसी समय आ चुकी थी कि वह उच्च शिक्षा का माध्यम बन सके। उर्दू गद्य किस प्रकार पूर्णतया जीवन संघर्ष में सहयोग दे रहा था, यह चर्चा आगे के अध्यायों में आएगी।